करते हैं। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फौसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। गुनाहों के असरात के सिलसिले में आज मज़ीद कुछ चीज़ों को हम समझेंगे, और ये मौजू इस लिहाज से बहुत अहम है कि गुनाह हर वो चीज़ है जो क़्यामत के दिन हमें अल्लाह सुबहान तआला के सामने भी शर्मसार करेगी, दुनिया में चेहरे का नूर भी ले लेती है, और कल क़्यामत के दिन हसरत का ज़रिया होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी को क्यों गंदगी में डालकर अल्लाह ताला से दूर किया। अभी तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसके बाद तो वाकई इतना खौफ आता है गुनाहों से, कैसे लगता है कि शायद बिजली और किसी और ख़तरनाक चीज़ से इंसान इतना ना डरे जितना उसको अपने गुनाहों से डरना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला शैतान को जो मोहलत दे चुका है, वो मोहलत असल में इस लिहाज से बहुत अहम थी कि वो इंसान को ज़िंदगी के आखिरी दम तक बहकाता रहता है, और जब शैतान दुनिया से जाता देखता है किसी इंसान को तो उस वक़्त तो आप कह लीजिए कि एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देता है और ऐसे हालात पैदा कर देता है कि इंसान मरते वक्त ही कहीं अल्लाह को पीछे करके उसी को बड़ा बना दे और इसी तरह की बातें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके मेरे लिए इन सारी चीज़ों को मानना, पढ़ना, सुनना आसान कर दे जो कल क़्यामत के दिन की रसवाई का भी ज़रिया हो, और अल्लाह ताला हमें आज इसकी तौफीक दे कि हम थोड़ा सा सब्र कर लें। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मैं इसको एक छोटी सी मिसाल से देकर मिसाल देना चाहूँगी कि खाने पीने में आप और मैं अपनी आदत को तब्दील कर लें जिस तरह चाहें, उसी की तरह फिर दिल और जिस्म और ज़ुबान भी तैयार हो जाता है। हम पाकिस्तान के लोग हैं, मिर्चों के बगैर खाना नहीं खाते, लेकिन अगर यही मिर्च किसी चाइनीज़ को या जापानीज़ को दे दी जाए तो हो सकता है कि वो हम पे केस कर दे कि तुमने मेरे कत्ल की कोशिश की। फ़र्क किस चीज़ का है कि हमारा मिर्च का टेस्ट बन गया, उसका नहीं बना। इसी तरह बाहर के मुल्कों में अमूमन चीज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत खाई जाती हैं, लेकिन आपके मेरे कल्चर में इतना नहीं था पहले, अब तो खैर फ़र्क ही मिटता जा रहा है। अब फ़र्क समझ आ गया ना, बस आप ये कह लीजिए कि गुनाह का एक टेस्ट होता है, एक फ़्लेवर बन जाता है। इंसान की ज़िंदगी में कुछ इस किस्म की आदत शामिल हो जाती हैं कि जिसके बाद उसको समझ ही नहीं आती कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और क्या कर रहा हूँ। और जब आप और मैं इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, यकीन कीजिए कि एक ईमान वाले को गुनाह में मज़ा ही नहीं आता। जैसे एक अच्छी तबीयत रखने वाले को गली सड़ी और ख़राब शराब में मज़ा नहीं आता ना, वो कहते हैं ये कोई खाने वाली चीज़ है, ये कोई पीने वाली चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह के हालात दूसरी जगह भी हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो आपको मुझे खैर और आफ़ियत से इस दुनिया में शैतान के चुंगल से आज़ाद करते हुए अल्लाह ताला की पसंद का इंसान बना दे, और इस तरीके से ले चलें कि जिससे आप और मैं अपनी ज़िंदगी में खैर और आफ़ियत रखें। और एक छोटी सी बात और, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी, कल की शर्मिंदगी से बचने के लिए आज अपने आप को गुनाहों से दूर कर लें। अल्लाह ताला मेरे आपके लिए आसान कर दे, क्योंकि कल की थोड़ी सी, आज थोड़ी सी लज्जत है ना कल की शर्मिंदगी, क्या फ़ायदा, बाद में शर्मिंदा होंगे। और आप ये भी देखिए कि अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए इस शर्मिंदगी से बचने का कितना भरपूर इंतज़ाम किया। अंबिया इकराम भेजे, किताबें भेजी, आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आते ही जो वादा किया था, उस वादे को भूल कर इंसान, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजते हुए एक वादा किया था, क्या कि तुम जब दुनिया में जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से हिदायत भेजूंगा, किताब मिलेगी, फिर जो हिदायत पे चलेगा अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां फरमा देगा, और सो ऑन। नतीजा क्या निकलता है कि इंसान जब अपने वक्त के नबी या नबी के पैगाम को भुला देता है तो हकीकत में वो फिर अपने बारे में इसी किस्म के गलत फैसले करता है। किताब से हम तरतीब के साथ पढ़ रहे हैं जी, स्टूडेंट्स लिखिए कि किताब में पेज नंबर क्या है, क्योंकि साथी तो सुनेंगे लेकिन आप तो बताएंगे। और अगर आप किताब खोलकर तैयार नहीं हैं तो फिर याद रखिए कि आप लोग शायद इससे पूरा फ़ायदा ना ले सकें। इतना हिंट दे देती हूँ कि हम इस वक्त गुनाहों के असरात पड़े, इफ़ेक्ट्स ऑफ द सिंस, किस तरह से इंसान के दिल में ये सारी चीज़ें घर करती हैं और फिर वो अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करता है। हमारे असलाफ और ख़ास तौर पे नबी सल्लम के बिल्कुल करीब के लोग गुनाहों से इस तरह डरते थे कि हज़रत, एक सहाबी का हमने कॉल पढ़ा था पिछले सेशन में, कि उन्होंने कहा कि मोमिन गुनाह से ऐसे डरता है जैसे कोई पहाड़ है और उसके ऊपर गिर जाएगा, जबकि मुनाफिक गुनाह को नाक पे बैठी हुई मक्खी की तरह से समझता है। कोई बात नहीं, सब करते हैं, अब क्या हुआ, मेरी क्या कह बात है, अब सारी चीज़ों से मैं ही बचूं और वही करूं। और फिर हमने ये भी देखा था, ये सब मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ ताकि आप अपनी बुक में से वो पेज निकाल लीजिए जहाँ से हमने बात को छोड़ा था, कि इल्म पर अमल करने वाले उलमा कौन थे, कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारा और उन्होंने अपने आप को ज़िंदगी भर गुनाहों से दूर रखने की कोशिश की। दुनिया जितनी बूढ़ी होती जा रही है उतनी खूबसूरत होती जा रही है, उतनी हसीन होती जा रही है, इसके फंदों से बचना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि पहले एक शख्स के लिए गुनाह करना मुश्किल था, ना बिजली थी ना कुछ, कुछ क्या देखता और क्या करता। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि आखिर कितना आसान था उस दौर में गुनाहों से बचना, सिर्फ नफ्स था ना और शैतान था। बाहर की दुनिया का असर थोड़ा था, आज क्या है, बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस बहुत है। हत्ता के माँ बाप जितनी भी कोशिश करके बच्चे के दिल दिमाग को पाक साफ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर का माहौल, स्कूल्स, दोस्त, रिश्तेदार, कजन्स, नानी का घर, फलां के पास, उधर गए उधर गए, नतीजा क्या निकला कि परेशान हो गया। तो आज की दुनिया में बाहर के हिसाब से असरात बहुत ज़्यादा है। आज के दौर में घर के अंदर से कम और बाहर से ज़्यादा रग़बतें मिलती हैं। नुकसान क्या होता है इसका कि फिर एक इंसान ये नाम लेकर सब करते हैं, कैसे करें, आज कैसे बचें, आज के दौर का तकाजा और उसके दौर का, और इंसान गुनाहों के असरात पे फिर गौर व फिक्र नहीं करता। तो हमारे लिए जो बात आखिर में थी वो क्या थी, कि गुनाह को छोटा नहीं समझना चाहिए। आज इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि किस तरह और कब मांगा जाए अल्लाह ताला से। बुक का अगर आप पेज खोल चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पेज 53 है, पीछे बात हुई थी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी गुनाहों से बचने की तौफीक अल्लाह सिवा, अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं मिलती। आज हम देखेंगे कि अल्लाह ताला से हम किस तरीके से ये तौफीक मांगें कि वो आपके मेरे लिए इन गुनाहों से बचना आसान कर दे। आइए थोड़ा सा बुक में से पढ़ते हैं। मैंने अपने नफ्स को अजीब पाया, अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरत तो मांगता है मगर अपने गुनाहों और नाफरमानियों को भूल जाता है। यानी जब भी दुआ मांगने को दिल चाहता है तो उस वक़्त बस और ही और मांग रहा होता है, लेकिन ये कमी कहता है कि अल्लाह मुझे गुनाहों से नफ़रत दे दे, मैं अपने गुनाहों को छोड़ दूँ। मैंने इससे कहा है बदतरीन नफ्स, तुझे बोलने का क्या हक है, अगर मांगना ही है तो सिर्फ़ अपने गुनाहों की माफ़ी की दरख्वास्त और इनकी बख्शिश की इल्तजा कर और बस। कहने लगा तो फिर मैं अपनी ज़रूरत किससे मांगूं। मैंने कहा तुमको अपने मकासद और मुरादात, मुरादात क्या होती है, मुराद की जमा, यानी जो भी चीज़ हमारी तलब होती, मुराद का रूट क्या होगा, वही जो इरादे का है, रौद रा वाव दाल। तो मुराद क्या है, जिस चीज़ का इंसान इरादा फरमाता है, ठीक है। तो अपनी मुरादें, इसको आप मुरादें भी कह सकते हैं उर्दू में, हाँ, मकासिद और मुरादें मांगने से नहीं रोकता। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि पहले सच्ची तौबा करो, गुनाह माफ़ कराओ, फिर मांगो। अल्लाह मुझे गुनाहों को भूल कर दुनियावी अगराज़ मांगने से पनाह दीजिए। अगर तौबा और इस्तग़फ़ार करके गुनाहों को मिटाओगे तो तमाम मुरादें खुद बखुद मिल जाएंगी, तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी। जैसा कि इरशाद नबवी है, जिसको मेरी याद मुझसे मांगने से मशगूल कर दे, मन शगलहु ज़िक्रियन मसअलती, जिसको मेरी याद मुझसे मांगने से मशगूल कर दे तो मैं मांगने वालों को अता करता हूँ, इसको भी अता करूँगा। क्या पता चला कि अल्लाह ताला बिन मांगे भी देता है जब बंदा अल्लाह की याद में हो, अल्लाह के जिक्र में हो, और अल्लाह के जिक्र की बेहतरीन सूरत अल्लाह के कुरान में हो। क्या पता चला कि अल्लाह से और बहुत सारी चीज़ें जो एक इंसान मांगता है, तो उसके साथ साथ अपने लिए गुनाहों की माफ़ी मांगे। आप अपने गुनाहों के नाम लिखें। हर इंसान का कोई एक वीक पॉइंट है, हम सब इंसान हैं, अल्लाह ने हम सब को मुख्तलिफ तरह से आजमाया है। किसी को ज़ुबान के चटखारे का शौक़ है, तो किसी को हुसन के दिखावे का शौक़ है, तो किसी को बदर कज़ा करने का शौक़ है। आप अपनी ऐसी आदत ढूंढें, फिर अल्लाह से मांगें, चुपके से मांगें, यकीन करें वो किसी को भी नहीं बताएगा और आपकी वो ख़राबी अपनी रहमत से दूर करेगा। और आप देखिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, इसमें क्या बात है? इसमें भी यही बात है कि अल्लाह मैं ख़ुद को नहीं बचा सकती, तू अपने जे बचाने में मदद दे। हज़रत बिशर हाफ़ी के मुतल्लिक आता है कि वह अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने फैलाते, फिर वापस करते और कहते, मुझ जैसे गुनाहगार को हक़ नहीं है कि अल्लाह से कुछ मांगे। कुव्वत व मारफत की वजह से इनकी ये सिफत थी, कुव्वत मारफत की वजह से इनकी ये सिफत थी, गोया वो अल्लाह को देख रहे हैं और मांगते वक्त अपनी लग्जिशात की वजह से शर्मिंदा हैं। जहाँ तक अहले गफलत का ताल्लुक है, तो इनका अल्लाह से मांगना भलाई के साथ है, ना कि कुर्ब के साथ। इस बात को समझ लो, गुनाहों से तौबा कर लो, फिर ताज्जुब की बात यह है कि गुनाहों के बावजूद अल्लाह से दुनिया की उमूर मांगते हो, दिल और दीन की दुरुस्तगी के तलबगार नहीं हो, और अपने मामलात को अकलमंदी से दुरुस्त करो और गाफिल ना हो, इसलिए कि गफलत इंसान को हलाकत के किनारे तक पहुंचाती है। तेरे गुनाहों का गम और हुजन तुझे दूसरे मशागिल से गाफिल कर दे। हज़रत हसन अल बसरी शदीद खौफ हालत खौफ में होते और हर वक्त खौफ खुदा इन पर तारी रहता था। हम अपने आप को देखें, देखिए ये तो थे ना, मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी फोकस्ड थी। आज भी आप देखिए, आप अकेले हैं, अपनी ज़ात के साथ हैं, गुनाह कम होंगे, इल्ला ये कि तन्हाई में शैतान गलबा दे दे। जितना आप इंसानों में रहेंगे, दूसरों के साथ ताल्लुकात में बिगाड़, उसकी बुराई, उसकी खराबी को किसी की मजबूरी की किसी की मजबूरी, हम ज़्यादा गुनाहगार होते हैं। इसीलिए आपको पता है कि हमारे असलाफ तन्हाई को पसंद करते थे। खुद हमारे प्यारे नबी का शुगल क्या था, तन्हाई को पसंद करते थे। आप देखिए अपने ऊपर रखिए, क्या मुझे तन्हाई में मज़ा आता है, या मैं बोर होती हूँ, या मुझे स्ट्रेस होती है, टेंशन है? मज़ा आना ईमान की दलील है, क्योंकि आप तनहा होते ही नहीं है। जब दो होते हैं तो तीसरा खुदा है, और एक होते हैं तो दूसरी अल्लाह की ज़ात है। जब पहला जुमला निकाल दें, जब दो होते हैं तो तीसरी ज़ात अल्लाह की है, और अगर एक हैं तो पहले एक ज़ात अल्लाह की है। तो लिहाजा तन्हाइयों से मोहब्बत कीजिए। मोमिन के लिए तन्हाई एक नेमत से कम नहीं है, जिसमें वो अपनी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने वक्त का सही और बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बना दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, और ख़ास तौर पे जान के अपने लिए मसरूफियात मांगते हैं, और फिर उसके बाद गिला करते हैं कि नमाज चली गई, वक्त ही ना मिला। बस दफ़ा मेहमान नवाजी के नाम पे नमाजें ज़ाया होती हैं, और कहते हैं सिला रहमी है, हकूक़ुल इबाद है। तो याद रखिए, हर वो हक़ जो बंदों के हक़ अल्लाह के हक़ को भी दे दे, यानी अल्लाह का हक़ भी बंदों को दे दे, वो हक़ नहीं हो सकता। फिर राहे हक़ में जिद्दोजहद का मज़ा, ये बड़ी प्यारी बात है, इसको भी नोट कीजिएगा। जब आप और मैं अल्लाह के रास्ते में कोई जिद्दोजहद करते हैं, हक़ लेते हैं या हक़ देते हैं या हक़ पे एक दूसरे को थामते हैं, ये वही बात है जो सूरत असर में वतवासो बिल हक़ की वतवासो बिल सब्र, तो फिर क्या लज्जत है? पहली सूरत होती है इंसान खुद नेक बनता है, फिर दूसरी कोशिश होती है कि दूसरों को नेक बनाता है। ये राह है हक, असल में वही है। ए ज़ी क़दर इंसान, ए इज़्ज़त वाले, जैसे ज़ी क़दर किसको कहते हैं, बाइज़्ज़त। तकवा को लाजिम पकड़ो, इज्जत व तकवा को ज़िल्लत व मासी के बदले मत फरोख्त कर। ख्वाहिशात की गर्मी की प्यास को बर्दाश्त कर, इसको हाईलाइट करें, मैं फिर बोलती हूँ, ख्वाहिशात की गर्मी की प्यास को बर्दाश्त कर, इसको समझिए ज़रा क्या है। गर्मी में जितना भी पानी पीते हैं ना, थोड़ी देर बाद और प्यास लगती है। और हमने बड़ों से ये बात सुनी है कि ठंडा पानी जितना पियोगे प्यास और लगेगी, तो ख्वाहिशात क्या है, गर्मी की प्यास है। एक पूरी करेंगे ना तो दूसरी लग जाएगी। अल्लाह हम सबको ख्वाहिशात पे काबू पाने वाला बना दे। जब बर्दाश्त इंतहा को पहुँचे तो मज़बूत होगा, तो जो भी कहेगा अफराद इस मुकाम को पहुँचे, यानी जो भी कहेगा अफराद इस मुकाम को पहुँचे कि जब कसम खाते हैं अल्लाह इसको पूरा करेगा। क्या पता चला कि जो बंदा अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी बात को ज़्यादा सुनता है। लौकसम अल्लाही लाबर रहो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाहिशात पर सब्र ना करते तो हरगिज़ ज़मीन पर दुर्रा मारने के लिए हाथ आगे ना बढ़ता। अगर अनस बिन नज़र के दादा ख्वाहिशात नफ्स को तरक ना करते तो यूँ यकीन और अज़म के साथ हरगिज़ कसम खाने की पोजिशन में ना होते कि वल्लाही ला तुकसिरु लिरबी, अल्लाह की कसम रबी का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। ये ख़ास वाक़या है, असल में किसी की का दांत तोड़ दिया था या उसकी बहन ने तोड़ा था, तो उन्होंने कसम खा ली थी कि मुझसे इसका बदला नहीं लिया जाएगा। तो अल्लाह ने वाकई फिर जो कसास लेने वाले आए थे उनके दिलों में नरमी डाल दी और उन्होंने उसको माफ़ कर दिया था। और यूँ ना कहे कि अल्लाह ताला गज़वे में शरीक होने की तौफीक दे तो अल्लाह देखेगा कि मैं किस तरह इसके दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ूंगा। ये भी एक सहाबी का कौल है जो कहते थे, सूरत अल अहज़ाब में आप इनका जिक्र पढ़ सकते हैं, कहते थे अगर अल्लाह ने मुझे एक बार जंग में जाने का मौका दिया फिर अल्लाह देखेगा मैं क्या करता हूँ। तो देखिए ये जुमले हैं और इसके पीछे ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, मान है। और ये बनता कब है? जब बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाता है। हम जैसे लोग सिर्फ़ बातों में अल्लाह को खुश नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सिर्फ अल्लाह अकबर कहने से या सुभान अल्लाह कहने से खुश नहीं होता, इसके लिए अमली मैदान में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। चुनाचे गज़वे उहद में जिहाद में शरीक होने का मौका मिल गया, बेजिगरी के साथ लड़ते रहे हत्ता कि शहीद हो गए। ज़ख्म इतने ज़्यादा थे कि पहचाने ना गए, सिर्फ पोरों के निशानात से पहचाने गए, यानी उंगलियों के ये जो सिरे होते हैं ना, यहाँ से इनकी बहन ने पहचाना था। नस बिन नज़र की ये बात हो रही है। ये सब हिम्मतें नफ्स की कशमकश का मुकाबला करने से मिलती हैं। अल्लाह के लिए गुनाहों से नफ्स को रोकने की लज्जत और मज़े का जायका चख, इसलिए कि तक्वा एक अजीम व शान समरावर दरख्त है कि इसका फल दुनिया की इज्जत और आखरत का शरफ और मर्तबा है। कितनी बड़ी बात है, इसको भी हाईलाइट कीजिए। तक्वा एक ऐसा दरख्त है जिस पे फल लगते हैं, और इसका फल किस सूरत में मिलता है? नंबर एक, दुनिया में इज्जत और आखिरत में शर्फ और मर्तबा। हम क्या चाहते हैं अपने लिए? यही कुछ तो चाहते हैं। तो क्या करो? तकवा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। आज हम तकवा से पहले ही कई मसलहतों का शिकार हो चुके होते हैं और उस गुनाह में पड़ जाते हैं जो दूसरे भी कर रहे होते हैं। तकवा क्या है? सारी दुनिया ही गुनाह कर रही है, आपके नहीं, मुझे मेरा रब बचाएगा और वाकई फिर वो आपको बचाएगा। अगर कहीं ख्वाहिशात नफ्स की प्यास शिद्दत इख्तियार करे तो उम्मीद के हाथों को इस ज़ात के सामने फैला दो जिसके कब्ज़े कुदरत में मुकम्मल सैराबी करना है, और अल्लाह से दुआ करो कि प्यास की इस तंगी को खुशहाली और सैराबी और सरसब्जी से बदल दें। और नेकी करते हुए भी नफ्स से गाफिल न रहो, और इन लोगों से इबरत हासिल करो जो अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा इबादत और इताअत में गुजारने के बावजूद आखिर में नफ्स के हाथों बर्बाद हो गए और उरूज के वक्त बुलंदियों तक पहुंचने की बजाय ख्वाहिश की पैरवी करके नफ्स के हाथों लुट गए और गिर गए। जन्नत के असूल का ज़रिया भी दुनिया में अपने महबूबात को तरक करना है, यानी दुनिया में जब हम अपनी मनपसंद चीज़ों को तरक करते हैं तो इससे इंशाल्लाह जन्नत का मिलना आसान हो जाता है। ये बात खूब समझ लें कि कामिल मर्द कौन है। अल्लाह की कसम, कामिल मर्द वो है जो तन्हाई में नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने पर कादिर होते हुए सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इससे बाज आ जाए। किफल का नाम याद कर ले, कैसे ऐन गुनाह की कुदरत रखते हुए उसने अल्लाह के खौफ से उस औरत को छोड़ा और अल्लाह ने किफल के सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दिए। सहाबी कहते हैं मैंने 60 बार ये वाक़या नबी सल्लम से सुना। जिस अमल की बात होती थी वो बात अब अक्सर लोगों के साथ करते थे। ए इंसान, तो इन चीज़ों को अल्लाह के लिए तरक करता है जिन्हें तेरी तबीयत करने के लिए तैयार नहीं या तू इन पर कादिर नहीं। तेरी आदत तो ये है कि सदके में ऐसा टुकड़ा देता है जो तेरे काम का नहीं है, या इन लोगों को अता करते हो जो तेरी तारीफ में रुतबुल लिसान हो, जिनकी ज़ुबानें तर रहती हैं तुम्हारी तारीफें करते हुए, लोगों को तब देते हो या उनको देते हो जो तुम्हारी तारीफें बहुत करते हैं बाद में। अल्लाह की कसम, तो इस वक्त तक अल्लाह ताला की मोहब्बत और दोस्ती के मुस्तहिक नहीं हो सकते जब तक अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को खालिस नहीं करोगे। अपनी ख्वाहिशात और पसंदीदा अफाल को तर्क और नफ्स के मकरूहात और नापसंदीदा पर सब्र नहीं करोगे, काम तो मुश्किल है लेकिन याद रखिए इसका फल बड़ा मीठा है। दुनिया में कड़वे करेले खाते हैं ताकि शुगर ना हो, बाज़ वालों कड़वी दवाइयाँ खाते हैं ताकि सेहत मिल जाए, लेकिन क्या ये चंद चीज़ें जो गुनाहों की रोकथाम के लिए ज़रूरी हैं, करने से आपको मुझे फ़ायदा नहीं होगा? तो क्या सीखा इस टॉपिक से? ये सीखा हमने कि अपने नफ्स पर काबू पाना, सेल्फ कंट्रोल, ज़िंदगी में कामयाबियों की दलील बन जाती है। और आज की तो तरबियत में ही आउट ऑफ कंट्रोल होना। बचपन से बच्चे को इस तरह से टैकल किया जाता है कि उसको आदत ही नहीं रहती नौ सुनने की। और अब तो बच्चों को पूछ के बड़ों के फैसले किए जाते हैं। अल्लाह ताला हमारी सोच को सीधा रखे। अगला टॉपिक देखेंगे, पेज 56 है, नफ्स को बहला कर काम लेना। नफ्स के साथ मुकाबला और मुजाहिदा बड़ा अजीब है, इसलिए कि ये बेहतर हिकमत अमली और अच्छी तदबीर के बग़ैर मुमकिन नहीं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने नफ्स को इसकी ख्वाहिशात और पसंदीदा अशिया और अफ़ाल में खुला छोड़ दिया, तो इस नफ्स ने इनको नापसंदीदा कामों में डाल दिया। और कुछ लोगों ने नफ्स की सख्त और बेजा मुखालफत की, हत्ता कि इसके हकूक तक से इसको महरूम कर दिया और इसके साथ जुल्म का मामला किया। इसका बुरा असर पड़ गया, जिससे इबादत बुरी तरह मुतासिर हुई। बास लोगों ने नफ्स को हमेशा खलवत में रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि नफ्स खलवत यानी तन्हाई का आदी हो गया और लोगों से वहशत होने लगी, यानी एक एक एक्सट्रीम पे चला गया, दूसरा दूसरी में, दोनों ही दुरुस्त नहीं है। लोगों से वहशत होने लगी, मामला यहाँ तक पहुँच गया कि फ़राइज़ तक छूट गए, वालदैन की फरमा बरदारी और किसी मरीज़ की इयादत से भी आजिज़ हो गए। अक्लमंद इंसान वो है जो नफ्स के साथ अदल का मामला करे, नफ्स को मेहनत पर भी आदत डाल दो, नफ्स को मेहनत पर भी आदत डलवा दे और असूल के मुताबिक इसके हकूक भी इसको दे दे, और इस तरह आदत हो जाए कि मुबाह पर छूट मिलने पर इससे आगे तजावुज़ ना करे, हदूद के अंदर रहे, इसके साथ बादशाह का सा मामला करे। चुनाचे बादशाह अपने किसी फौजी से मजाक करे तो गुलाम इसके सामने ना खुल सकेगा। अगर खुलने का इरादा करेगा तो इसकी हैबत इसको रोकेगी। इस तरह होशियार शख्स नफ्स के हकूक इसको अदा करने और अपने हकूक वसूल करे। तो क्या पता चला कि इंसान को अपने नफ्स को बहलाना चाहिए। आप देखिए कि कई दफ़ा ऐसा नहीं होता, बच्चा एक ज़िद पकड़ लेता है, फिर माँ उसको बातों में लगाती है, कभी उसको इधर कभी उधर, कभी खिलौना दिखाती है, फिर थोड़ी देर में वो भूल जाता है। बच्चे बड़ी जल्दी भूलते हैं। इसी तरह याद रखें, हमारा नफ्स भी ज़िद कर रहा होता है, और कभी तो टेम्पटेशन होती, कर लो ना, देख लो ना, देख लो ना, सुन लो, चले जाओ चले जाओ। बस ऐसे वक्त में बहलाएं, अच्छा भी नहीं, 5 मिनट, चलें 1 मिनट बाद, 2 बाद, ऐसे अपना ड्यूरेशन बढ़ाएं। अच्छा गीबत करती हूँ ज़रा 15 सेकंड के बाद, अच्छा फिर इसके बाद करूँगी, यानी फ़ौरन गुनाह पे अमल करने या गुनाह की तरफ रग़बत करने की बजाय क्या करें कि उस गुनाह को करने से अपने नफ्स को बहलाइए। और जितना ज़्यादा आप उसको अपने आप को बहलाएंगे ना, उतना आप देखेंगे कि आपका सेल्फ कंट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, आसानियों के साथ आप ये सारा मामला करते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह एक बच्चे की तरह, जिसकी बहुत अच्छी तरबियत हो चुकी होती है, अल्लाह ताला आपको भी उस चीज़ के साथ ये कंट्रोल वाला करवा देगा और आपका नफ्स फिर आपकी बात मानेगा। फिर एक और चीज़ जो बहुत ही अहम है, वक्त का जिया, टाइम वेस्टर। अक्सर लोगों को मैंने देखा कि वक्त को बेदर्दी से ज़ाया करते हैं। अगर रात लंबी हो जाए तो बेफायदा बातों या नावलों और कहानियों की किताब पढ़ने में सरफ करते हैं। हाईलाइट करें ज़रा, आजकल सर्दियों की लंबी रातें क्या करते हैं हम, रात को नावल पढ़ते हैं, कहानियाँ देखते या सुनते, या किसी भी सूरत में उसको फिल्मों की सूरत में तो नहीं पढ़ते देखते। और अगर रातें छोटी और दिन तवील हो जाए तो रात को नींद और दिन को तफरीही मकामात या बाजारों में वक्त गुजारते हैं। इनको मैं इन लोगों से तशबीह देता हूँ जो किसी कश्ती में सवार होकर महवे गुफ्तगू हैं और कश्ती इनको लेकर रवां दवां है, मगर इन्हें ये नहीं मालूम कि कश्ती ने लेकर कहाँ जा रही है और इनका अंजाम क्या होगा। देखिए अब जिनको पता ही नहीं है कि जाना किधर है, वो कहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह बात लोगों से होती है, आपने क्या करना है आज, पता नहीं, क्या करेंगे पता नहीं, कब करेंगे पता नहीं, तो आपने तो फिर आज का दिन ज़ाया कर दिया। बहुत कम लोगों को देखा जो वक्त की कदर जानते हैं, अपने लिए ज़्यादा राह की तैयारी में लगे हुए हैं और दुनिया से कूच करने का सामान मुहैया करें। इस मामले में लोग मुतफावत का शिकार है। मुतफावत क्या होती है? फौत से, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर इस चीज़ को करना। इनका ये तफावत वतन इकामत यानी दुनिया, वतन इकामत जिसमें आज आप और मैं हैं, दुनिया में खर्च करने के मुतालिक इल्म की कसरत और किल्लत के एतबार से, इनमें से बेदार लोग यहाँ अल्लाह ताला के लिए खर्च करने के मुतालिक पूरी मालूमात रखते हैं, खूब खर्च करते हैं और तिजारत में लगाते हैं, जिससे इनकी मनफियत में इजाफा दर बदर हो जाता है, इजाफा होता है, और गाफिल लोग कोई तैयारी नहीं करते और बसा औकात कलील सा ज़्यादे राह भी साथ नहीं रखते, और कुछ लोग रास्ते ही में डाकुओं के हत्थे चढ़ जाते हैं और लुट जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, उम्र की कदर करनी चाहिए। इल्म को रोशनी, हिकमत को दलील बनाकर, वक्त को कीमती से कीमती बनाकर, तवील सफ़र के लिए ज़्यादा सफ़र तैयार करो। आप देखिए कि इस पे तो बहुत बात हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एवरी संडे एक क्लास होती है जिसमें हम वक्त के बारे में बात पढ़ रहे हैं कि टाइम क्या है और वक्त की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। और मुझे किसी साथी की बात इस वक्त कोट करने में खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि क़यामत के दिन जिस बात पे मैं गुमान कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में भेजेगा, वो ये है कि मैंने कभी वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल करती रहती हूँ और मैं अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। अब इतनी बड़ी बात कोई ऐसे नहीं कहता, ये मान तभी होता है जब ऐसा किया हो। ठीक है, 5-10% इसके बावजूद भी टाइम वेस्ट होता होगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि अमल की रग़बत है ना, और नज़र जब होती है ना किसी चीज़ पे, बस अगर आप देखिए, अगर आप टाइम को प्लान करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप इस 100% उस पर चलते हैं, लेकिन आप फिर कम से कम किसी हद के मुताबिक लेट होते हैं। ये नहीं कि आप 2-2 घंटे लेट हो जाएं, 2 मिनट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो जाएंगे, 5 होंगे, लेकिन फिर आपको ये नहीं पता कि पता नहीं कब होगा ये काम, पता नहीं ये करना है कि नहीं। तो लिहाजा इससे क्या सीखा, वक्त पर नज़र रखनी है इंशाल्लाह। फिर अगला टॉपिक है इल्म पर अमल करने वाले उलमा। मैंने मुख्तलिफ उलमा कराम की ज़्यारत की है जो बकदरे इल्म मुख्तलिफ उल अहवाल थे। मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन उलमा कराम की सोहबत से हुआ जो अपने इल्म के तकाजे पर अमल करते थे। अगरचे बाज़ उलमा इल्म के एतबार से बढ़कर थे, मेरी मुलाकात उलमा की एक ऐसी जमात से भी हुई जो हदीसे मुबारका के हाफिज़ थे और इनकी मार्फत भी रखते थे, लेकिन अपनी मजालिस में जिरह तनकीद के नाम से गीबत के मुर्तकिब थे। यानी जिरह तक क्या होती है, जिरह कहते हैं असल में, जैसे हदीस की इस्तलाह है कि जिन लोगों ने हदीसें पेश की फिर उनकी ज़िंदगी के बारे में देखा जाता है, खोज की जाती है कि ये सच्चा है ये झूठा तो नहीं, इस तरह। लेकिन बाज़ लोग इस पे से भी फिर तनकीद तक पहुँच गीबत तक पहुँच जाते हैं, यानी उनकी पर्सनल लाइफ पे पहुँच जाते हैं या दूसरों के साथ उनकी बुराइयाँ डिस्कस करने लगते हैं, और किरते हदीस पर उजरत लेते थे और जवाब देने में इसलिए जल्दबाजी से काम लेते थे ताकि इनकी इज्जत में फ़र्क ना आए। यानी लोग ये ना सोचें कि इनको आता नहीं है या इनको पता नहीं है, अच्छा जवाब नहीं दे रहे, इसका तो इनको पता ही नहीं होगा ना, इसीलिए नहीं दे रहे। और मैंने अब्दुल वहाब अल आती की सोहबत भी उठाई जो हजरत असलाफ के अन मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। इनकी मजलिस में गीबत का तसव्वुर भी ना था, इसको हाईलाइट करें और हम अपनी मजलिसों को भी चेक करें। ना ही वो सिमाए हदीस पर उजरत वसूल करते थे। अगर मैं हदीस रिकाक पढ़कर इनको सुनाता, रिकाक क्या होता है, रकीक से दिल को नरम करने वाली रोने वाली बात, इनको सुनाता तो रोते रहते और मुसलसल रोते। इस वक्त मेरी उम्र कम थी, इनके रोने का मेरे दिल पर असर हुआ और दिल में अदब की बुनियाद डाल गया। इनकी ज़िंदगी इन मशाइख की ज़िंदगियों की तरह थी जिनके औसाफ़ मैंने किताबों में थे, इसी तरह मैंने अब्दुल मंसूर अल जवालकी की सोहबत भी उठाई है। वो इंतहाई खामोश मिजाज बुज़ुर्ग थे, इंतहाई गौर व फिक्र और सोच विचार के बाद कलाम फरमाते, नहायत मुत्तकी और परहेजगार थे। बस औकात कोई आसान मसला इनसे पूछा जाता जिसका इनके शागिर्द भी बआसानी जवाब दे सकते थे, वो जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करते थे और यकीन करके फिर जवाब दे देते थे। अक्सर रोज़ा रखते और हमेशा खामोश रहते। इन दो बुज़ुर्गों के दीदार से मुझे जितना नफ़ा हुआ इतना किसी और से नहीं हुआ। इससे मैंने ये समझा कि ज़ुबानी कलामी दलील के मुकाबले में अमली दलील ज़्यादा रहनुमा और फ़ायदा मंद और नफ़ा बख्श है। यानी क्या पता चला कि बातें सुनने से ज़्यादा अमली तौर पर किसी को देखने से इंसान को फ़ायदा होता है। اور میری ملاقات ایسے مشائخ سے بھی ہوئی جن کی خلوتیں، خلوتیں کیا ہوتی ہیں، تنہائی، ان بساط و مزاح سے مزین تھی، علم پر زیادہ عمل پیرا نہیں تھے، ان کی زندگی میں بھی ان سے فائدہ کم پہنچا اور مرنے کے بعد تو بالکل بھلا دیے گئے، اور ان کی تصنیفات کی طرف لوگوں کا طبعی رجحان نہیں ہوا۔ کیا پتہ چلا، ہر بات کی تاثیر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ہر دوا اثر نہیں کرتی نا، اسی طرح ہر ایک کا پڑھا پڑھایا فائدہ نہیں دیتا۔ کچھ کے علم کو اللہ پھیلاتا ہے، اس کا دلوں پہ اثر ہوتا ہے، کچھ کا کانوں سے ٹکرا کے گزر جاتا ہے۔ اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری بات میں تاثیر پیدا کر دے، قولاً بلیغاً والی کیفیت ہو جائے، دلوں میں اتر جائے۔ تھوڑی سی بات کہیں، لوگوں کو ایسے لگے کہ ہمارے دل پر پڑ گئی، اور صرف ایسے ہی نہ ہو کہ ہم کانوں سے خوبصورت لفاظی میں کھو جائیں اور اثر کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، علم پر عمل کرنا ہی اصل چیز ہے، اور وہ شخص یقیناً مکمل مسکین و مفلس ہے جو اپنی عمر عزیز کو ایسے علم کے حصول پر لگا دے جس پر اس کا عمل کرنا اسے دنیا کی لذتیں اور آخرت کی نیکیاں سب فوت کر دے۔ قوت حجت کے باوجود حالت افلاس میں پیش ہوا، تو کیا پتہ چلا، اصل بات پھر علم پر عمل ہے۔ دیکھیں نا کہ آپ ڈرائیونگ سیکھیں پھر پریکٹس نہ کریں، بھول جائیں گے۔ کوکنگ کی صرف ریسیپیز پڑھیں، شوق میں ایک دن سیکھ بھی لیا، پریکٹس نہ کی، نہیں صحیح ہوگا۔ پریکٹس میکس اے مین کلوز ٹو پرفیکٹ، کیونکہ پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے۔ تو کیا پتہ چلا، علم پہ عمل آپ کی پریکٹس ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، جب آپ جس جگہ رہیں گے، جن لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے نا، آپ کے اندر ویسے ہی ہوگا۔ آپ کپڑے کے شوقین لوگوں میں بیٹھیں گے، ہر وقت کپڑوں کی باتیں، ہائے کپڑے، گرمی آ گئی، کیا چل رہا ہے، کیا فیشن، کون سا درزی، کون سی۔ آپ کبھی بیٹھ کے سسٹرز کو، جو ایک گھر میں چار چھ لوگ رہتے ہیں، چائے کی ٹیبل پہ باتیں کرتے دیکھا کرے، درزی پہ گئی تھی، لیس لینے گئی تھی، جیولر پہ گئی تھی، ہائے جان نکل گئی، ہائے بڑی مہنگائی، ان کی سارا وقت یہی فوت باتیں۔ اچھا، کچھ کھانا پکانے کے شوقین لوگ ہیں، ہر وقت کھانا کھانا کھانا، اور اسی طرح سوان۔ آپ اور میں اپنے مشغلے بھی دیکھیں، ہمارا کیا مشغلہ، ہمارا زیادہ وقت کن سوچوں میں جاتا ہے۔ اور اگلا ٹاپک بہت رقیق ہے، اور وہ ہے جان گنی کی حالت، یعنی جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے۔ ذرا سا سوچئے، ایک قدم زمین پہ ہے تو دوسرا آسمان پہ جا رہا ہے، اس وقت ہم کیا دیکھیں گے؟ کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے؟ موت کے وقت کا انتباہ ہو، بیداری کا منظر بھی بڑا عجیب ہے۔ اس وقت ایسی بیداری ہوگی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی پریشانی کا عالم ہوگا جس کی کوئی حد نہ ہوگی، اور وقت رفتہ پر سخت افسوس ہوگا، اور تمنا کرے گا کہ اب اگر وقت مل جائے تو معافات کی تلافی کر لے۔ معافات کیا؟ جو کر چکا غلط کام۔ اور یقین کے ساتھ توبہ کرے گا، اور سخت حالت کی کیفیت یہاں تک لے جائے گی کہ موت سے قبل ہی خود کو مار دینے کو جی چاہے گا۔ اس حالت کا ایک ذرہ بھی عافیت کے زمانے میں حاصل ہو جائے تو مکمل تقویٰ و پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ عقل مند اور ہوش مند انسان وہ ہے جو اس حالت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ اگر اس حالت میں حقیقی صورت سامنے نہ ہو تو کم از کم اس کا خیال ضرور کرے، اور اس طرح ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس منظر کو خیال میں لانے کا معمول بنا لیا جائے تو خواہشات نفس اور معاصی یعنی گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا، اور نیک عمل کرنا اس سے بھی آسان تر ہوگا۔ اگر موت کے وقت کا منظر ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہو تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ جیسا کہ حبیب العجمی کے بارے میں روایت ہے، جب صبح ہوتی تو اپنی بیوی سے کہتے، ذرا غور سے سنیے گا، کبھی ہمارے اور ہمارے شوہر کے ماں بہن بھی ایسی باتیں ہوئی صبح کھانے کی ٹیبل پہ، ناشتے کی ٹیبل پہ، یا اٹھتے ہی بیٹھ کر؟ کیا آج اگر میرا انتقال ہو جائے تو فلاں شخص مجھے غسل دے اور فلاں فلاں لوگ اٹھا کر لے جائیں؟ یہ کون کرے گا؟ جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہم تو اسی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، شاید موت آ جائے، وہاں بھی ہمیں لگتا نہیں، کوئی معجزہ ہی ہوگا۔ صحت مند انسان ہر روز صبح اٹھ کے اگر اس طرح کی انسٹرکشنز دے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی نے ایک شخص سے فرمایا، آج ظہر کی نماز آپ پڑھا دیں۔ تو اس نے کہا، ظہر کی نماز اگر پڑھا دی تو عصر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو حضرت معروف کرخی نے فرمایا، اس کا مطلب ہے تم عصر تک زندہ رہنے کی امید کرتے ہو؟ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں لمبی امیدوں سے، یعنی ظہر پڑھ لیتے تھے تو امید نہیں رکھتے تھے کہ عصر کو بھی زندہ ہوں گے۔ اس کے لیے اصل ضرورت ہے نفس کے احتساب کی۔ असल बात यह है, इससे आज हम दूर हैं और इसी की ज़रूरत है। तो आइए थोड़ा सा इख्तसाब नफ्स के बारे में पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें नफ्स का मुहासवा करने की तौफीक अता फरमाए। अशियाए दुनिया के हसूल ने मुझे बाज़ रुख्सतों पर अमल करने को आसान कर दिया। जब मुझे इनमें कुछ हासिल ना हुआ तो दिल में तकद्दुर पैदा हुआ। क्या होता है? दो रूही कैफियत, बोझ यानी करूँ ना करूँ, और दुनिया के असूल के रास्ते मेरे सामने वाज़े हुए। दिल में जुल्मत का एहसास हुआ तो मैंने अपने नफ्स से कहा है, नफ्से बद, गुनाह से दिल मुकद्दर यानी गंदा। असल में लफ्ज़ ये ना कदूरत वाला है। तकद्दुर क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए दिल में मैल आ जाना, आप कहते हैं ना उससे कदूरत है, बस एक नेगेटिव फीलिंग कह लें। ए नफ्से बद, गुनाह से दिल मुकद्दर हो जाता है, होता है। अब इसको अगर मुकद्दर कह देंगे तो ये तो दूसरा मुकद्दर, तो मुकद्दर काफ बारीक पड़ेंगे। दुनिया की इन तमाम अशिया के हसूल में कोई खैर नहीं जिनकी वजह से दिल पर जुल्मत छा जाती हो और दिल मैले हो जाते हों। आसान लफ्ज़ बोल रही हूँ। दीन में खलल के साथ बाग भी मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं। दीन में खलल के बसात बाग भी मिल जाए तो कोई लज्जत नहीं। यानी अगर आपका दीन कमज़ोर हो और आपको एक बहुत बड़ा बाग मिल जाए तो कोई खुशी नहीं। और दिल की दुरुस्तगी और कदूरतों से पाकी के साथ जानवरों के बाड़े में सो जाए तो बादशाहों की पुरतईश जिंदगी से कई गुना बेहतर है। हाईलाइट करें, आज लोगों ने लग्जरियस लाइफ को खुशी की दलील समझा था लेकिन कामयाब नहीं हुए। देखिए खुशहाली और है और सामान्य खुशहाली और चीज़ें। आज कौन सी मशीन घर में नहीं? दबाने वाली मशीनें मौजूद हैं, मसाज करने वाली हैं, एक्सरसाइजेस मशीनें हैं, तो क्या आज का इंसान खुश है? तो असल बात यह है कि आप किन चीज़ों के बीच में हैं, ये आपकी खुशी नहीं है। खुशी क्या है कि आपके अंदर क्या है। मेरी नफ्स के साथ मुसलसल कशमकश जारी है। कभी मैं इस पर गालिब आता हूँ तो कभी वो मुझ पर गालिब आता है और अपनी ज़रूरियात का मुतालबा करता है और मुझे कहता है मेरी ज़रूरियात पूरी करो, मैं मुबाहात से मुतजावज़ नहीं होऊंगा। मैंने इसे कहा क्या ये अमल तकवा के ख़िलाफ़ नहीं है? कहने लगा ये तो है। मैंने इसे कहा जिसका नतीजा ये हो इसको करने का क्या फ़ायदा, इसमें क्या भलाई है? एक दिन मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा, यहाँ से आप देखिए कि हमारे असलाफ कैसे अपने नफ्स से बातें करते थे, बाज़ लोग तो आईने में खड़े होकर खुद को पुकारते थे। क्या कहा इन्होंने? तेरा नास हो, ज़रा मेरी बात तो सुन। अगर तूने दुनिया में मुशतबे यानी शुबे वाले मालो दौलत जमा कर भी ली तो क्या तुझे यकीन है कि इन सबको खर्च भी कर सकेगा? कहने लगा नहीं, यकीन तो नहीं। मैंने कहा तो फिर क्या करो? यदि आप इमेजिन करें ना, अगर वाकई बंदा दुनिया की चीज़ें ले भी ले, इस्तेमाल नहीं की तो किस फ़ायदे की? खामखा उसके नाम पे रखी गई चीज़ें वो। मैंने कहा तो मेहनत तेरी और माल दूसरे खाएं, यानी तू मेहनत करके कमा रहा है, गुनाह तुझे होगा अगर गलत तरीके से कमा रहा है, फ़ायदा दूसरे ले जाएंगे। तेरे हिस्से में ऐसा बोझ कि जिससे बचना यकीनी नहीं है, तू ऐसा माल जमा करने का क्या फ़ायदा, तो ऐसा माल जमा करने का क्या फ़ायदा। इसको हाईलाइट करें। आज के बाद खानी तो एक रोटी है ना, दो तीन कपड़े जिस्म पे हों, मौसम की मुताबिक आपके ज़रूरियात हो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? तो इतनी भाग दौड़ क्यों? कभी ज़रा सोचिए, तसव्वुर में लाएं कितनी मेहनत करते हैं लोग अप टू डेट होने की। पहले बाप कमाता है, फिर माँ कमाती है, फिर बेटे, फिर बेटियाँ, फिर छोटे छोटे घर के 10 लोग हैं, 10 कमाते हैं, फिर हर एक की ज़िंदगी अपनी जगह एक मुकम्मल ज़िंदगी बन जाती है और एक लम्हे में दुनिया से चले जाते हैं। तो इस अमल को छोड़ दे, तो इस अमल को महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए छोड़ दे जो तकवा की राह में खलल अंदाज हो रहा है। ए नफ्स, तो मुहर्रमात के सिवा मुबाहात को तर्क करने के लिए तैयार नहीं है? क्या तूने ये नहीं सुना कि जो महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी शय को छोड़ देता है तो अल्लाह ताला इसको इससे बेहतर शय नवाजता है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको इससे बेहतर शय से नवाजता है? क्या तू इन लोगों की ज़िंदगियों से इबरत हासिल नहीं करता कि जिन्होंने माल तो जमा किया मगर इस पर काबिज़ दूसरे लोग हो गए? उम्मीद तो इन्होंने बहुत की मगर अपनी उम्मीद को पूरे होते हुए नहीं देख सके। कितने उलमा ऐसे हैं जिनके पास किताबों के अंबार लगे हैं मगर इनसे फ़ायदा और नफ़ा हासिल नहीं, इन पर अमल नहीं करते। मगर कितने लोग ऐसे हैं कि इनके पास 10 से ज़्यादा किताबें नहीं मगर नफ़ा देने वाले उलूम से भरपूर बहरावर हैं। यानी थोड़ी किताबें लेकिन, या थोड़ा इल्म भी देते हैं या लेते हैं तो नफ़े वाला होता है, प्रैक्टिकल बातें होती हैं। कितने खुशी की ज़िंदगी गुजारने वाले ऐसे हैं जिनके पास 2 रुपये भी नहीं हैं, और कितने सोने चांदी और मालो दौलत के ढेर में हैं मगर ज़िंदगी इनकी तलख तर है। इन लोगों की ज़िंदगियों से कोई इबरत हासिल नहीं करता कि एक तरफ माल कमाते हैं, दूसरी तरफ खर्च के मसारिफ बढ़ जाते हैं, कभी खुद बीमारी का शिकार और कभी घर वाले मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में आ जाते हैं, जिनके इलाज के लिए साल की तमाम कमाई सर्फ हो जाती है। तो मेरा नफ्स मेरी मलामत से जिच होकर, जिच यानी तंग आकर कहने लगा, तू ही बता कि मैं क्या करूं। मैंने कहा, तू हर वक्त इस ज़ात का ख्याल दिल में जमाए रख जो हर वक्त तुझे देखती है, और हर वक्त अल्लाह ताला की अजमत पर गौर कर और सोच कि वो तेरे बातिन को भी देखता है और ज़ाहिर को भी। लिहाजा कौल व अमल में एहतियात पर अमल कर, रुख्सतों से भी खुद को बचा, और तकवा की अजीम दौलत को हवाए नफ्स के मताए कलील के बदले फरोख्त करने से हर वक्त बचने की भरपूर कोशिश कर। अगर तबीयत इस पर मायल ना हो तो इससे कह दे, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र करो, अल्लाह कोई राह निकालेगा। तो ज़रा सा आप और मैं भी अपने नफ्स को आज तकलीफ दें। शीशे में खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े हों और फिर कहें कि सही हो जाओ, अपनी इसलाह कर लो। और इस तरह से आप देखिए, चंद बातें सुनाएंगे ना तो नफसादी हो जाएगा। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि जो कुछ भी हम ये सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको अल्लाह सुबहाना ताला हमारे लिए अमल के लिए आसान कर दें। आप देखिए कि यही एक रास्ता है, इसके बरक्स कोई शॉर्टकट नहीं है, जिसके ज़रिए से मैं और आप गुनाहों से बच सकें। आज जो करना है कर लें, गुनाहों से हर ख़तरनाक चीज़ से भी ज़्यादा डरिए। ये गुनाह कल क़यामत के दिन मालिक के सामने शर्मसार करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में बेइज्जत करवाएंगे। कल कितने लोग होंगे जिनको आज हम कुछ भी नहीं समझते, और वो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे और उनके नाम पुकारे जाएंगे। कभी आपने कोई ग्रेजुएशन पार्टी या कोई ऐसी सेरेमनी जिसमें कंपटीशन हो वो अटेंड किया हो? बहुत सारे लोग जमा हुए, सब ने हिस्सा लिया, लेकिन 4-6 आगे निकल गए। फिर जब उनके नाम बोले जाते हैं, फिर उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, फिर उनके इंटरव्यूज़, फिर गिफ्ट, फिर तारीफ़ें, तो बाकी लोग बैठे हसरत करते हैं, हाथ मलते हैं। तो ज़िंदगी से ऐसे गुजरिए कि हसरतें ना हों। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप लोग ख़ुद शेयर कीजिए कि आपने आज के सेशन से क्या लिया। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इसको आसान कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।